और हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं था, उसका भी कोई स्वार्थ नहीं था, प्रेम कैसे टूट गया बतला सकता है?
उद्धव जी ने कहा कि जन्म भर में हमने कोई ऐसा प्रश्न ही नहीं सुना। इसका उत्तर क्या देंगे उद्धव? अद्भुत बात, बहुत बातें इनकी
ले उद्धव जी ये कह रही हैं। देखो उद्धव, तुम तो उसका उत्तर नहीं देगा, तुम्हारे लिए संभव कर नहीं मिलेगा। देखो मृगयु कपिंदम दिव्य देह लुप्त धर्मा, तुम लौट जाओ मथुरा और कह देना जो से आप यदि उनको छोड़ सकते हैं तो वो भी आपका प्रेम करना आपसे छोड़ दिया। बड़ी आनंद से हैं, खाती पीती मस्त रहती हैं, अब आपको याद नहीं कर। देखो एक बहेलिया होता है, वन में शिकार करता है बंदरों का, बंदर का मांस नहीं खाया जाता, इसमें कोई भी बहेलिया बंदरों का शिकार नहीं करता, बानर नर के समान है, उनको मारने से पाप लगता है, उसका मांस भी नहीं खाया जाता जैसे मनुष्य का नहीं खाया जाता। ये किसी जमाने में सुनते हैं, या एक काला भी, ये तो द्वापर युग के काला है, और एक काला था द्वापर त्रेता युग में, वो कहता था मैं दशरथ जी का पुत्र राम हूं, किंतु था काला, वन में गया, वनवास करने के लिए गया, इतना अद्भुत रूप जो कहां नहीं जाए, राजकुमार का वेश छोड़ करके और वनवासी का वो बना लिया, अपने केस को बांध लिया और वनवासी बन करके चला, साथ साथ में उसकी पत्नी को भी ले लिया, वन में जा रहे हैं, अरे पत्नी की क्या जरूरत है, हरा नहीं गए तो अपनी पत्नी को भी ले लिया, अपने भैया को भी ले लिया, अरे त्यागी बना है, वनवासी बनाया तो धनुष बाण की जरूरत, धनुष बाण भी उसने लटका ली, तलवार भी ले लिए, तो वनवासी होने की तुमको जरूरत क्या थी? अच्छा गया, अच्छा बंदर को किसने मारा? बंदर को तो वही मारता नहीं, उसका मांस तो खाया नहीं जाता, बंदर ने क्या किया? अरे वो बंदर भी कामी था और ये भी कामी है ना, कामी कामियों में दोस्ती लगी, वो अपनी स्त्री के लिए तड़प रहा था, कौन? सुग्रीव, दो भैया थे सुग्रीव और बाली, दोनों में लड़ाई लगी, किस लिए? स्त्री के लिए, स्त्री मैंने सुग्रीव की पत्नी थी तारा, को नजर पड़ी तारा पर बाली की, उनकी स्त्री को हरण कर दिया, घर से इनको निकाल दिया, यह राम का शरण में आया, प्रभु आप हमारी स्त्री को यदि मिलवा देंगे तो आपकी स्त्री भी तो कोई चुरा ले गया, मैं भी इसको खुदवा करके आपसे मिला दूंगा, ये दोनों के लिए शर्त रहे। राम ने कहा यह ठीक कहता है, मेरी स्त्री को कोई चुरा ले गया है, तुम पता लगा देना और तुम्हारी पत्नी को मैं बाली को मार करके मैं लौटा दूंगा। इन दोनों कामियों में बात की, कौन कह रहा है? गोपियां कह रही, किसको कह रही हूं? उस भ्रमर को कह रही हूं, बहाना है, बैठा हुआ है वो, उद्धव जी सुन रहे हैं विस्फारित में, तो ऐसी बातें हमने कभी जीवन में नहीं सुनी जो ये गोपियां इस प्रकार से कह रही हैं। आगे कहने लगे, देखो इसके बाद में काजे तुम जाओ लड़ लो अपने भैया से, वो लड़ने गया, काजे मैं तुम्हारी सहायता था, बाली ने ऐसा उसे मारा और मरा होकर के आया, काजे आपने हमारी रक्षा नहीं की, मैं पहचान नहीं सका जब तुम में कौन बाली है कौन सुपुरी, अच्छा ये माला देता हूं, ये माला अपनी दे दी, अजय अब जाओ लौट, पेड़ की आड़ से ऐसा बाण मारा जो उसको छाती में लगी और वो गिर गया। उसने राम फिर गए उसके पास में, उसने पूछा आपने मुझे क्यों मारा? अपनी पत्नी के लिए ना, अरे तुमने हमसे क्यों नहीं कहा? रावण को तो हमने 6 महीने अपने कांख में बंद करके रखा था, वो हमसे लड़ने आया, मैं समुद्र में सूर्य के लिए पानी दे रहा था और उसी समय में वो लड़ने आया और मैं ध्यान करते करते और ऐसे ऐसे करते उसको ऐसे पकड़ लिया और अपने कांख में दबा करके जल देने लगा, तो उसने नाक मुख से काटना आरंभ किया, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई वो क्या जुआ होता है ना, जुआ कोई काट रहा है खुजलाहट आई तो उनको याद भी नहीं रही, 6 महीना हो गया ना, तो याद ही नहीं रही, थोड़ी सी खुजलाने लगा तो निकल करके भागा। तब से हमको गुरु मानता है, हमसे बहुत डरता है। मैं यहीं से आदेश हरे रहा हूं, सीता जी को लेकर के आ जाओ और राम को दे, हमारी बात को कभी भी नहीं वो ये कर सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। तुमने इस छोटी सी बात के लिए हमें हमारा वध किया, हमने तुम्हारा कौन सा पाप किया, कौन सा तुम्हारा हमने दोष किया। राम ने कहा, मैं ये जानता हूं यदि कोई मैया हो, कोई भाई की स्त्री हो, कन्या हो, इन सबको अपनी बेटी के समान समझते हैं, तुमने उनकी पत्नी को क्यों ले लिया, इसलिए तुमको मारा। अच्छा, इसलिए कर रहा। फिर बाली ने क्या, सुग्रीव ने क्या किया, वो तारा को उनसे फिर ले लिया, वही दोष किया जो सुग्रीव की पत्नी को वो ले लिया था, अब ये इन्होंने बाली की पत्नी को रख लिया, वही दोष किया, किंतु इनको क्यों नहीं मारा। गोपियां उद्धव जी सुने इसका उत्तर, उनके सूझ बूझ में नहीं आ रही, वही काला। यही नहीं कहता है कि मैं जितेंद्रिय हूं, मैं स्त्रियों के अधीन नहीं, और अपनी स्त्री के कहने से एक सोने के हिरण को, जाओ इसका चमड़ा ले आओ, चमड़ा ले आओ। राम जी ने क्या करेगी, पहले उसको ले आओ, यदि वो गीता जी मिल गया तो उसके साथ में खेलूंगी, और जब हमारा समय हो जाएगा तो जब लौटेंगे तो कई कई मैया को ये उपहार दे, और यदि ये पकड़ में नहीं आए तो इसे मार करके इसका चमड़ा ले आना। लक्ष्मण जी ने कहा, ऐसा मत करो, ये माया है राक्षसों की, कोई विपत्ति आने वाली है, हिरण इतना सुंदर नहीं होता, किंतु कहा माने, नहीं माना, और अंत में सीता जी की चोरी है। इसके पहले एक शूर्पणखा उनको उनके पास में भेजा गया, स्त्री जाती थी उनके पास में आई, रावण की बहन, और राम के रूप को देखकर के आकर्षित हो गई, राम से विवाह करना चाहा। राम ने कहा कि हमारी तो विवाह है, हमारी तो पत्नी है सीता, तुम लक्ष्मण से शादी कर लो, इसकी पत्नी नहीं है। लक्ष्मण जी के पास में वो भी परम सुंदर, उन्होंने कहा कि मैं तो सेवक हूं इस प्रभु का, तुम यदि दासी बननी चाहती है तो यहां आओ हमारे पास, और रानी बननी चाहती है तो राम के पास में जाओ। एक रानी क्या, वो तो 360 रानियां, 1000 रानियां रख सकते हैं, तो तुम विचार कर लो। फिर राम के पास गई, राम ने फिर लक्ष्मण जी के पास गई, क्रोधित हो गई, सीता को खाने के लिए दौड़ी, उसके नाक और कान को काट लिया। लक्ष्मण जी ने उनके कहने से, क्यों काटा, गोपियां पूछ रही हैं, क्यों काटा, काटने की जरूरत क्या थी, इतना सुंदर रूप लेकर के क्यों जाए, क्या जरूरत थी, और यदि कोई मुग्ध हो रहा है तो कह देते भाई अपनी स्त्री के अतिरिक्त मैं विवाह नहीं करना चाहता, तुम लौट जाओ, नाकान काटने की क्या जरूरत, इसलिए काटा एक सखी, मैं बताऊं किस लिए, इसलिए काटा, ये जीवन में किसी को दूसरे पति के साथ में, इसको कोई पति इसको ना चाहे, कोई पुरुष ही ना चाहे, इसलिए नाकान काट लो सदा के। अरे सुना, एक और था सत्ययुग में काला, वो कौन, वामन रूप धारण करके आए, था तो बहुत लंबा चौड़ा, उसके पैर थे 1000 मील लंबे चौड़े, किंतु बन कर आया कैसा, काला है ना भीतर बाहर का, ये काले ऐसे ही होते हैं, तू भी उसी का रूप है। तो वो गया बलि महाराज के यहां और छल बल कल से कहा, मैं छोटा सा ये ब्राह्मण का बच्चा हूं, मुझे 3 हाथ जमीन चाहिए, 3 पग जमीन चाहिए। मैंने कहा 3 कम, 4, 5, 6 मांग लो, 10 बीघे जमीन मांग लो, राजभवन बना देता हूं, सुंदर स्त्री से विवाह करा देता हूं, तुम्हें राज्य दे देता हूं, हाथी घोड़े सब ले लो। नहीं नहीं, मैं बहुत संतोषी जीव, मैं ब्राह्मण हूं, बटू हूं, मुझको कुछ नहीं चाहिए, हमको केवल चाहिए कितना, बस 3 पग जमीन, उसमें छोटी सी एक कोठरी बनाकर के भगवान का भक्ति करूंगा। अच्छा, पाप तो लंबी चोरी करता है बुद्धिमानों का, किंतु अकल नहीं है, राजा ने कहा बलि महाराज ने, भाई अधिक मांगो, नहीं नहीं हमको जरूरत, अच्छा तो ठीक है माफ लो। संकल्प करा दिया, जब मापने लगे तो क्या किया? अरे भाई मापो, बेईमानी मत करो। तुम बेईमानी क्यों करता है? ये काले बेईमान भी होते। लंबा पैर बढ़ाया, एक पैर से एक डग से सारी पृथ्वी को माप लिया और दूसरे डग से तल तलातल पाताल रसातल से लेकर के भूर भुआ सह महाजन तपस सत्य तक एकदम पूरा एकदम माप लिया। कहा जब तीसरा पैर कहां रखू, नहीं तो तुमको पाप लगेगा, अपनी बात पूर्ण करो। उन्होंने ये नहीं कहा, अरे बेईमान ये इतना लंबा पैर क्यों बढ़ा दिया? तुमने जितने छोटे होकर कहा तुम छोटे पैर से माप लो, उनकी लड़की तो बिगड़ गई। बामन जी का रूप सुन देख करके बड़ी पहले आकर्षित हुई, कहा जी ये मेरा बेटा हो जाता तो अच्छा, अगले जन्म में हमारा बेटा हो। और जब देखा जैसे ये लंबे पैर बढ़ा करके हमारा पिताजी का सारा राज्य ले लिया तो बहुत बिगड़ गई। बोली अच्छा तू हमारा बेटा होगा, होकर के आओ, मैं तुम्हें बीष पान करा करके मार डालूंगा। तो ये कौन हुई? यही पुतना पीछे से हुई थी। तो वो ये उसने सारा राज्य ले लिया और लेकर के उनको बांध दिया नाग पास में। जैसे कौवे होते हैं, कौवा भी कैसा होता है? सफेद होता है ना, पक्का काला होता है, वो उनसे भी काला। और चतुर नंबर एक आंख होती है उसकी, दो आंख नहीं, कभी इधर से देखता है कभी इधर से देखता है। वो क्या करते हैं, यदि स्त्रियां होना उनको पहचान जाता है, पुरुषों के पास जरा आने से घबराता है। स्त्रियां कोई पकवान लेकर के सिर पर चली जा रही हूं तो एक कौवा दस कौओं को बुला लेगा, जहां काव काव किया सब लोग आ जाए और सभी मिल करके उसको भी खाएंगे और जो ले जा रहा है उसको भी ठुकराएंगे, यहां तक उसको गिरा देंगे और गिरा करके खाएंगे। ऐसा यही उसका सारा राज्य ले लिया और फिर उसी को बांध करके गिरा दिया। अब कालों से हमें कोई जरूरत नहीं, मानो भ्रमत गुंजार करते पाजे स्वामी जी ऐसा मत कहे, आप ऐसा अनुमान कर रहे हैं, वो तो बाहर भीतर आपके अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते हैं। यदि इतना ही वो खराब है तो उनकी बातें क्यों कर रही हैं आप, क्यों कर रही हैं? और दूसरी बात नहीं है कोई दूसरी बात, यही तो बात है। हम लोग उसको छोड़ सकते हैं, उनकी कथाओं को नहीं छोड़ सकते। अंत में कहते हैं, अंतिम श्लोक क्या है ना, अंतिम अतिवत मंडपुर या आद्य पुत्राधुरास्ते। बहुत सी बातें हैं, समय बहुत अधिक हो जाएगा। अभी शुभानंद जी को श्रीमद भागवत बहुत कहना है। तो वो करें अतिवत मधपुर या आद्य पुत्राधुनास्ते समर्थ पितृ ज्ञान बंधुश्च सम बंधुश्च गोपान क्वचित अपि किंकरी नाम गणिते भुजम करु सुगंधम मुद्भद नाभास्व। अरे अंत में कहिए, अरे मैंने इस कृष्ण के दूध के साथ में हमने बहुत बुरी तरह से पेश है, ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। हमने ये पूछा भी नहीं, ये तुम इतनी दूर से आ रहे, जरा पानी तो पी लो, कृष्ण हमारे प्रियतम कैसे हैं ये पूछा नहीं। अरे दूध से के साथ में तो मीठा व्यवहार करना चाहिए, हमने उनसे किया नहीं। अब उनको सुधाई और पूछ रहे हैं अभी वत मधुरी जा आज पुत्र आज अल्लाह जी बैठिए पधारिए, बहुत दूर से आ, आप कहां चले गए थे? बीच में वो थोड़ा से कहीं चला गया था, कहां चले गए थे? हमारे रूढ़ बातों से हमारे ऊपर में अप्रसन्न हो गए, हमारी चित्त वृत्ति अभी ठीक नहीं है, क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं ये हमारे ऊपर में अंकुश नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर में नाराज मत। हमारे आर्य पुत्र मधुपुरी में है, सुना था जो वो गए हैं विद्या लाभ करने के लिए अमन के कारण, सुना था जो बड़े निष्ठुर गुरु को पाया, कुंड धारण करने वाला, कोई कुंड धारण करने वाला विष्णु भक्त नहीं, और ये बड़े निष्ठुर होते हैं, किसी पर दया नहीं होती क्योंकि वो निराकार निरंजन निर्गुण होते हैं, कोई गुरु नहीं होते, किस पर दया करें किस पर क्या करें,
तो ऐसे गुरु के पास चला गया। वो होता है जूता पहन करके मत आना, खड़वा खड़ा भी मत पहनना, छतरी दूध वूध मत खाना, गैया गैया चराना, गैया का दूध मत खाना, और छाता चटाई जैसे मत लेना। ऐसा नुकसान
वो हमारे उसमें है एकादशी जैसा कर सकते हैं। जन्माष्टमी को जब तक जन्म न हो तब तक उपवास रखने की चेष्टा, पानी पीने की, और नहीं रह जाता है तो पानी है शरबत है, और नहीं तो उसमें रामनवमी का दोपहर तक जरूर जब तक रहना चाहिए, इसके बाद में एकादशी जैसा। और चैतन्य महाप्रभु जी का भी उनका जन्म तक कर सकते, उसके बाद में फल मिल जाते निश्चय सबको, किसी का शाम को उनका आविर्भाव होता है, शाम को मारा था हिरण्य, इसलिए कोई दिन सवेरे से हम लोग को जलपान भी नहीं करता। यदि हो सके तो अच्छा तुम लोग कर सकती हो, जब तो करते ही है कई लोगों के लिए है, तो लोग खा सकता नहीं पी लेंगे जिसको करना है, और उन लोग भी यदि होगा निष्ठा तो वो लोग भी कर लेंगे।
काम खोज वो मोह मास्टर और वैष्णव के प्रति अपराध, गुरु चरणों में अपराध, भक्ति के प्रति अपराध, धाम के प्रति अपराध, ये सब दूर हो जाने पर भी विमान लेके दो लो काम स्त्री के प्रति आसक्ति, पुरुष के आसक्ति, प्रतिष्ठा इत्यादि ये सब कुछ दूर हो गया भी, तो चार चीजें उसके पीछे चलती हैं।
फिर भी चार चीजें चलती
हैं, वो क्या चार चीजें हैं? पूर्व जन्म में आपने कुछ बुरे कर्म किए, बुरे कर्म किए हैं, जैसे किसी को आपने मार डाला, गाय को मार डाला, लोगों को अपमानित किया, कहीं आग लगा दिया, जीवों की हिंसा की, किसी तक को भी हिंसा इत्यादि, ये दुष्कर्म होते हैं। ये दुष्कर्मों को करने से इस जन्म में उनका फल कुछ भोगना पड़ेगा,
इस जन्म में
वर्तमान जन्म।
अच्छा,
मान लो कि आपने कहीं से दीक्षा हरिनाम भी ले लिया,
हाँ,
तो वो जब तक एक स्टैंडर्ड में नहीं पहुंचे पहुंच जाते तब तक भोगना पड़ेगा।
ओ,
तब तक जिसमें नाम में आसक्ति रुचि आ जाएगी वो अपने आप जल करके खत्म हो जाएगी, किंतु जब तक रुचि इत्यादि नहीं आ जाती,
हाँ,
निष्ठा भक्ति में नहीं आ जाती, तब तक ये आपको भोगना पड़ेगा, और ज्ञानियों को मुक्ति तक उनको भोगना पड़ेगा।
ओ,
तो उन दुष्कर्मों का फल कभी कभी ऐसा हो जाता है जो भक्ति में मन नहीं, और उसी में ऐसा शरीर में कोई रोग हो गया, शोक हो गया, मोह हो गया, या किसी ने मार दिया है, कुछ ऐसा हुआ तो भक्ति स्थगित रह सकती है, किंतु गुरु बल जब हो,
हाँ,
और उनका संपर्क होता रहे, हरि कथा का जोर रहे, हरिनाम कीर्तन करता रहे, तो इसको पा सकते।
क्या देवता भी इसमें बाधक बनते हैं?
देवता भी बाधक बन सकते हैं,
भक्ति वो कैसे
किसी स्थिति तक।
अच्छा,
जैसे नारद जी हैं,
हाँ,
नारद जी को देवताओं ने बहुत सा लोभ दिया, भक्ति में बाधन करने के लिए। सुखदेव जी हरि कथा सुन रहे, भागवत की कथा सुनेंगे तो देवता लोग अमृत लेकर के पहुंच गए, ये अमृत उनको दे दीजिए और हम लोगों को भक्ति ये दे दीजिए, या और भी तरह से।
अच्छा,
जैसे कि ये थे विश्वामित्र जी थे,
अच्छा,
तपस्या कर रहे थे,
अच्छा,
भगवत भजन करने के लिए थे,
अच्छा,
उन्होंने सोचा कि हमारा राज्य ले लेगा,
अच्छा,
तब वो ऐसा देश दान करके आकर के दूसरे
सफर किया। अच्छा, क्या भजन करने से
मनारी कथा होने पर थोड़ा सा स्टॉप कर
दीजिए,
भक्ति भी प्रबल नहीं हुई है, भक्ति प्रबल होने पर ये आकर के भी कुछ नहीं कर।
अच्छा,
कुछ ऐसा हुआ है आपने सब कर्म अच्छे किए हैं,
अच्छा,
उपकार किया है,
अच्छा,
गाय का दान किया है,
हाँ,
कहीं राज्य का दान कर दिया, अर्थ का दान कर दिया, किसी के ऊपर भी उपकार किया है,
हाँ,
तो इसका फल भी आपको भोगना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाएगा, भोगने से ही होगा। वो कभी कभी कहीं से धन आ गया, रुपया पैसा आ गया, आकर्षित लोग हो गए और उसको आप संभल नहीं सके, बस उसी में लगे रह गए, इसी को ही अपना मूल चिन्ह लिया, भजन आपका दुख
दूर हो
जाए, से ये भी आएगा, किंतु एक हद तक आएगा। जब निष्ठा होगी तो ये बहुत उन समय दूर हो जाए, किंतु अभी रहेगी। रुचि होने पर भी ये कुछ कुछ रहेगा, आसक्ति होने पर करीब करीब ये दूर हो जाएंगे, किंतु अभी मरे हुए रहेंगे, रहेंगे किंतु मरे हुए। भावावस्था में भी, किंतु भावावस्था में भी यदि ऐसा कुछ हो और उद्दीपना जग जाए, फिर वे जीत हो सकते हैं और आपको भक्ति से चूक कर सकते हैं। इसलिए उस समय तक खूब सावधानी से रहना चाहिए। तो इसके बाद में नंबर आता है भक्ति उत्थ, सुकृति। भक्ति उत्थ मैंने शुद्ध भक्ति तो किया नहीं, प्रहलाद की तरफ में, नारद जी की तरफ में, वो हरिदास ठाकुर की तरफ में, आपने लोक प्रतिष्ठा के लिए कुछ भक्ति की, देवताओं में, देवियों में अपना रखते हुए भी राधा कृष्ण का भजन कर रहे, एकाग्र होकर के चित्त को नहीं कर रहे, उस समय में प्रतिष्ठा की भी लालसा है, और भक्ति के बदले कभी कभी जो भक्ति नहीं उसको भी ग्रहण कर लेते हैं, उसमें कर्म या ज्ञान प्रधान रहता है और उसमें भक्ति रहता है। इसको कर्म निशा या ज्ञान निशा भक्ति, अथवा प्रधानीभूत कर्म और ज्ञान रहता है।
अच्छा,
ऐसा करने से उनको भक्ति तो थोड़ा कर रहे हैं, हरिनाम भी करते हैं, किंतु वो जो है उसका फल कुछ है, जितनी स्त्रियां हैं, पुरुष लोग हैं, सब आकर्षित होंगे, और इतना सम्मान देंगे, इतना पैसा रुपया अर्थ जागतिक चीजों को देंगे, ये आपके लिए संभालना बड़ा भारी मुश्किल है। उसको वही संभाल सकता है जिसको गुरु का बल है, सब समय हरि कथा हो रही है, सब समय निरंतर उसमें है, आने पर भी उससे कोई मतलब नहीं रह करके अपने गुरु के चरणों में वो सम्मान दे देगा, अपने आप नहीं मिलेगा,
नहीं मिलेगा।
जैसे मान लेते हमारे पास भी ये लोग आकर्षित होकर के, हमने इनकी श्रद्धा को एक जगह लेकर के और कहा कि हमारे अंदर में वो गुण नहीं है जो हम बोल होना चाहिए, ये मेरा कोई फल नहीं है, मैं तो एक साधारण गया बीता आदमी, गुरु जी के संग से उन्होंने जो कुछ हरि कथा और भक्ति दी उसके द्वारा ये सम्मान मिल रहा है, ये सम्मान गुरु जी को, मैं गुरु नहीं हूं, ऐसी भावना को रख करके यदि करें, और नहीं तो आपका सर्वनाश कर देगा। और कुछ होता है अपराध,
अपराध
कुछ जानबूझ करके होते हैं, कुछ नहीं जानबूझ करके,
जैसे
जैसे देवताओं और दानों में युद्ध होने पर इंद्र की विजय हुई, देवताओं की विजय हुई, अब बहुत बड़ा भारी एक वो क्या कहते हैं मजलिस या क्या होता है अभिनंदन सभा, ये इंद्र को अभिनंदन किया गया और सब लोग कह रहे थे इसमें इंद्र की ने बड़ी बहादुर के साथ में असुरों को हरा, इसलिए इसका प्राप्त जो ये है इन्हीं का अभिनंदन किया गया। बस बड़ा भारी सम्मेलन हुआ, जितने देवता लोग सब लोग उसमें उपस्थित हुए, गंधर्व उपस्थित हुए, सुंदर सुंदर मालाएं दे करके उनके गले में अर्पित की जा रही है और सभी लोग उसका घोषणा करते हुए चले। इतने में बृहस्पति जी आ रहे।
अच्छा,
इंद्र ने सोचा ये गुरु जी ने सब मजाक किरकिरा कर दिया, ये ना आते तो अच्छा, क्योंकि वो जब आएंगे तो हमको प्रणाम करना पड़ेगा, तो लोग कहेंगे अरे इनको ये प्रणाम कर रहा था वही श्रेष्ठ है,
वही श्रेष्ठ है, समझ गया,
समझ गए,
समझ गया।
इसलिए उन्होंने सोचा जिसे ना आए वो बात वो समझ गए, तो गुरु है ना, अरे ओहो इसके अंदर में कुछ दूसरी बात, बस वहीं से अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान जब हो गए तो देवता असुरों को ये पता लगा कि अपने गुरु का इन्होंने अपमान किया है, अवज्ञा की, बस इसी समय आक्रमण करो, इसी समय आपको जीता
जाए, गुरु का बल नहीं रहा ना,
अब गुरु का बल नहीं रहा, और गुरु जी अंतर ध्यान, अब वो खोजते खोजते हार गए, किंतु कहीं नहीं, असुरों ने आक्रमण किया, जब गुरु जी नहीं मिले तब तो बड़े दीपक, हमने बहुत बड़ा भारी अन्याय किया, तब उनको हरा करके राज्य ले लिया और कहां कहां वो घूमते फिरे, फिर ब्रह्मा जी के शरण में गए, तब उन्होंने फिर पूछे अजय जाओ अपने गुरु की सेवा फिर से कर करके उनको मनाओ तब जा,
सही है
ऐसे।
अच्छा,
ये जानबूझ करके ठीक नहीं, कुछ प्रतिष्ठा की लालसा से गुरु जी की
अवज्ञा हो
गया। इसी तरह से यदि शिष्य कोई समझता है जी अपने बल से मैंने ये किया और इतना प्रचार किया और इतने लोगों को भगवान की तरफ मिलाया और इसलिए इसका भोग बनाया था, अच्छी अच्छी चीजें देंगे तुम उसको ग्रहण करके और प्रसाद कर, इसलिए
गुरुबल होना चाहिए, गुरुबल
निरंतर हरिनाम करना चाहिए, निरंतर
भजन पर अग्रसर होना चाहिए त्याग और वैराग्य के साथ। जो कुछ आता है ठाकुर जी को दो,
सही है,
गुरु जी के दे दो, अपना ये मत समझो इसका एक पैसा भी हमारे भोग के लिए।
राज बता,
यदि अपने भोग के लिए होगा, सुंदर सुंदर अंगूर आए, सुंदर सुंदर आम आए, और कुछ घटिया किस्म का अमरूद भी आए। अमरूद को कहा गुरु जी के घर गुरु जी के और ठाकुर जी के मंदिर में दे, अमरूद को कहा जैसे इसमें अच्छे जो पके हुए लाल लाल जो सुंदर है ये हमारे घर में रखो। तो ये क्या हुआ
गुरु जी के अभिज्ञान
हो गया,
समझ गया,
ऐसे वैष्णों के प्रति अवज्ञा यदि कोई भी।
सही है,
ये सब चीजें देख सुन
हमारा जी वैष्णवों का पूर्वादि चरित्र जैसा वो उनके लास्ट में गुजरा उसको दोहराना चाहिए या नहीं?
कौन
जैसे
वो व्यक्ति खुद ना दूसरा,
दूसरा व्यक्ति जैसे कोई पूर्वादि
इसको ऐसा समझो एक देश जाती हरिदास जी को पति बनाना चाहती वो भी राजा के षड्यंत्र से। ये लोग इसका आदर करते हैं, भिखारी मुसलमान हिंदू भी नहीं, और कृष्ण कृष्ण करता है, बड़े बड़े राजा लोग हिंदू लोग उनकी घर के महिलाएं लड़कियां बूढ़ियां सभी उनको प्रणाम करती हैं। कहिए ये तो बड़ा भारी बदमाश, हमको इतना बड़ा भारी राजा कुछ नहीं करता है, इसको करते हैं। एक बेचा को फिर किया, तुमको इतने हजार रुपए देंगे, तुम इसको लोगों की दृष्टि में गिरा
दो।
उसने चेष्टा किया तीन रात कि वो निरंतर हरिनाम करते रहे। उन्होंने कहा जी हमने 1 करोड़ नाम का प्रतिज्ञा की है, ये जब तक नहीं कहा ना तब तक पानी नहीं पीता, अब निराम होने वाला है, तुम ठहर जाओ। करते करते तीन रात हरिनाम सुनाया, उसके हृदय की कितनी सब वो निकल गई, वो उनके चरणों में गिर पड़ी, बोली जैसे आप हम पर कृपा करें, मेरी कृपा लोगी या तो हाँ ये आश्रम तुम्हारा है, अब से ये तुलसी जी तुम्हारी है, अब इसकी सेवा करना, कोई चीज अपने पास में मत रखना, अपने घर में जो कुछ संग्रह किया उसको सब तुम दान दे दो, एक पैसा मत रखो। उन्होंने ब्राह्मण को दे दिया, ब्राह्मण लोग ले लिए बड़े प्रसन्नता से ले लिया, और एक कपड़े पहनकर उनके पास में आई, और प्रतिदिन वो 3 लाख हरिनाम करती। हरदास ठाकुर ने कहा कि जो खाने की जरूरत है बस एक बार खाने के लिए रखना, वही साधारण थी, और सब लौटा दे, बस कपड़े लगते जो कुछ आता सब लौटा देती, और दिन रात हरिनाम करती, हरिदास ठाकुर जी के चरणों में प्रणत रहती। अब बड़े बड़े साधु महंत लोग उसके दर्शन के लिए आते, यदि उसको कोई बेस्या मानेगा तो अपराध हो जाएगा,
अपराध हो जाएगा ना,
किंतु यदि कोई साधु का बेस ले लिया और उसकी आड़ में वैसा ही पहले जैसा कुछ कर रहा है जरा कम
तो अपराध होगा,
तो फिर उस व्यक्ति का अपराध
होगा। अच्छा महाराज जी,
भक्ति को धोखा देना,
धोखा
और किसी को नहीं, इसमें सावधान।
अच्छा महाराज जी, क्या हरि भजन करने से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है?
हाँ बहुत।
अच्छा,
जब निष्ठा के रूप में जब आएगी भक्ति उस समय अपने आप उसके हवा से ही ये कर्म फल प्रारब्ध जितना सब कुछ।
अच्छा महाराज,
भाई तुनाम स्फुरणी नतते ये रूप गोस्वामी,
रूप गोस्वामी
शास्त्रों में ऐसा कहा गया, इसे तो विश्वास रखना, हरिनाम करने पर शुद्ध निष्ठा जब हो जाएगी, जब भक्ति लपलपाती नहीं रहेगी, सीधी स्थिर हो जाएगी नाम के आभास से, नाम करने की।
अच्छा महाराज जी, जैसे अभी मिड्डा जी है या और कोई भी है तो अभी भजन महामंत्र जाप करेंगे, ये निष्ठा नहीं है, और जैसे लहसुन प्याज का सेवन करते हैं या प्याज का धीरे धीरे नहीं छोड़ सकते, नाम भी छोड़ सकते हैं, नाम भी जाप करते हैं और छोड़ने की कोशिश भी करते फिर भी नहीं टूटता है, तो क्या उनको नाम जप करना चाहिए या उनको?
नाम जप तो अपना वो करता रहे,
हाँ,
किंतु अभी गुरु जी उसको अभी हरिनाम नहीं देंगे।
हाँ अच्छा,
नहीं देंगे, कहेंगे जिससे अभी गले में माला न ले लो और प्याज तो एकदम तुरंत छोड़ दो।
अच्छा,
शराब वराब मत लेना।
हाँ हाँ,
और तुम निष्ठा जब हो जाएगी तो मैं तुमको हरिनाम दिखा दूंगा।
सही है,
बहुत उत्साह देना चाहिए।
अच्छा, उनको उत्साह तोड़ना तो नहीं चाहिए ना महाराज?
नहीं, वो हरिनाम करते थे अपना जैसा करते थे, किंतु अभी उस रूप में जो मंत्र है यदि देगा वो मंत्र तुमको चौपट कर देगा,
चौपट कर देगा,
तुमको चौपट करेगा, उनको नहीं।
अच्छा,
अनाधिकारी व्यक्ति, ये नवा अपराध है,
नवा अपराध,
अनाधिकारी व्यक्ति को जिसमें भी नाम में पूर्ण रूप से श्रद्धा नहीं, उसको नाम देने से या मंत्र देने से यदि देगा तो तुम्हारा पतन,
पतन गुरु का, गुरु का पतन। अच्छा महाराज जी, एक बात और, जैसे कभी तो भक्ति बहुत श्रेष्ठ चलती है और कभी फिर भक्ति में मंदता आ जाती है, तो क्या ये मतलब भक्ति जो है घंतरल भक्ति?
अभी अभी निष्ठा ही नहीं,
अनिश्चित
भक्ति,
अनिश्चित भक्ति,
किंतु करना चाहिए,
करना चाहिए।
अच्छा महाराज जी, जैसे कभी कभी बहुत गहरी व्याकुलता आ जाती है, बहुत ज्यादा व्याकुलता आ जाती है, तो फिर क्या वो भक्ति का लक्षण है या नहीं है?
कैसी व्याकुलता?
जैसे व्याकुलता ये आ जाती है कि वास्तव में हम हरि भजन के लिए ही आए हैं, संसार में हमारा ये कोई कर्तव्य नहीं, ये तो सब नाटकबाजी है, यानी संसार के प्रति विरक्ति भाव होना,
ये भक्ति नहीं है।
अच्छा
क्यों?
हाँ
क्यों नहीं भक्ति है?
हाँ
अभी नेगेटिव है।
हाँ
मतलब भगवान के प्रति प्रेम की भावना ना
अभी नहीं आई, तो अभी निष्ठा नहीं आई।
हाँ,
ये तो विरक्ति उन चीजों के प्रति जो भक्ति के लिए बाधक
है, बाधक है।
अभी बाधक के प्रति अभी कुछ आकर के उसका मन व्याकुल हो रहा है, जिसमें भगवान के लिए व्याकुल है, जाओ हाँ मैं भगवान को दर्शन नहीं, अब रहा नहीं जाए आंखों से आत्मा की, ये व्याकुलता की जरूरत।
अच्छा
और वो जो छोड़ता छोड़ने वाला है तो कुछ दिन के बाद में मैंने व्याकुल तो हो रहा है किंतु हरिनाम नहीं करेगा, हरि कथा नहीं सुनेगा, तब फिर वो
कथन आ जाए। अच्छा एक बात, अच्छा महाराज जी जैसे भगवत कथा कहना और भगवत कथा में जैसे कोई रो रहा है तो क्या ये शुद्ध भक्ति का आवास है या भक्त्यावास है, छाया भक्त्यावास?
कोई जरूरी नहीं।
अच्छा
उस व्यक्ति के
मनस्थिति,
मनस्थिति नहीं अमर
भक्ति का अधिकार भक्ति की स्थिति बने।
यदि नारद ऋषि चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु को एक जगन्नाथ जी की मूर्ति छोटी सी दिखला दो,
अच्छा
क्या करेंगे
वो? तो उछल जाएंगे, देने मिल जाएंगे,
जो दिखला रहा है वो नहीं रोएगा। वो कहेगा जैसे मैंने उनको छका दिया,
छका दिया
उनको, थक दिया।
सही है,
किंतु महाप्रभु की ये ऐसी भावना है कि देखते ही बस उद्दीपना होगी और कृष्ण की उद्दीपना हो जाएगी।
सही है,
उसी तरह से ये भक्ति की स्थितियां हैं। कौन सी स्थिति में है वो, ये उस व्यक्ति के ऊपर। एक आदमी, एक गृहस्थ आदमी है, एक मोर पंख को देखा और देख करके सोचा अरे ये तो कृष्ण का वाला वही मोर है, और कृष्ण की लीला की स्मृति आई, थर नहीं सका, कंप और ये पुलक और रोमांच होया, वो जमीन पर गिर पड़ा। ये एक स्थिति ये भी है। तो इस तरह से वो कौन स्थिति में कैसा कर रहा है, अभी आभास है कि अपराध है कि क्या? अद्वैतवादी लोग जो है, निराकार मानने वाले, उनको भगवान का नाम कीर्तन करने से यदि आंख में आंसू आते हैं तो समझो ये प्रतिबिंब है,
प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब भाषा है।
और जो लोग भक्ति में चल रहे हैं और कभी कभी उनको ऐसा हो जाए, अभी भक्ति नहीं है, निष्ठा भी नहीं उत्पन्न है, कभी कभी आ जाए, कैसे आ जाए? कोई अभी मनुष्यों का चित्त जो है अभी थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, तरल होता है।
अच्छा
स्त्रियों का चित्त बड़ा तरल होता
है,
वो भगवान की कथा सुन करके नहीं रोएंगे या रोएंगे? आप रो रहे हैं इसलिए आपको देखकर समझ रहे हैं?
समझ
गए,
सही बोला था।
सही
बात है,
सही बात है। अच्छा मारा भी एक बात, नहीं
इन सब चीजों को समझने की चेष्टा।
समझिए समझिए। अच्छा मतलब
उस स्थिति में है, कैसे क्या कर रहा है आप लोग, हम लोग अभी नहीं समझेंगे।
समझेंगे
हम लोग को थोड़ा सा, कितना दिन करते 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 थोड़ा सा हम लोग समझ जाएंगे। हम देखेंगे अरे ये तो आदमी अभी सिगरेट पी रहा है और फिर अभी रो रहा है तो इसका मतलब है ये अभी नहीं।
समझ गया।
ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं वो देखते हैं कि जो मुक्ति हमको ऐसे इतना परिश्रम साधन से नहीं मिलती थी, थोड़ा सा भगवान का नाम करते ही मिल जाएगी आनंद के मारे जीवन।
अच्छा महाराज जी जैसे करते हो जैन धर्म में
आते होते हैं,
अच्छा
ये समझो,
अच्छा
जो कि भगवान का रूप नहीं मानते,
हाँ
निराकार मानते हैं और उसमें लय हो जाना चाहते हैं, अपनी आत्मा का सर्वनाश कर देना चाहते हैं।
अच्छा
ये लोग बल्कि अपराध हैं।
अच्छा
और जो लोग मुक्ति तो चाहते हैं किंतु भागवत पढ़ते हैं,
अच्छा
उसके प्रति आदर, संत समाज जहाँ कीर्तन करता है वहाँ पर जाते हैं,
अच्छा
दिन हिंदू करके सुनते हैं,
अच्छा
ये लोग सत्संग में भगवान की भक्ति पा करके ऊपर। ये इस ज्ञानी के लिए नहीं कहा गया, पहले वाले ज्ञानी के।
अच्छा
जैसे ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचति न कांक्षति समस्तेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते
परम।
इसका अर्थ यह है जो कि ज्ञानी हो जाते हैं बहुत उच्च कोटि के, तो ये देखते हैं कि संसार तो एक तरह से मिथ्या है, इनकी कोई चीज चाहे क्यों, इसलिए कोई भी आकांक्षा नहीं रह जाती, न सोचति
न कांक्षति,
कोई आकांक्षा नहीं करते जो संसार की कोई वस्तु मिल जाए, और न सोचती
शोक नहीं करते, कोई चीज आकर के नष्ट हो गई, लड़का मर गया कि कुछ हो गया, धन संपत्ति नष्ट हो गई, इसके लिए शोक भी नहीं करते।
अच्छा।
और संभवता सब समय प्रसन्न रहता है, सब समय प्रसन्न रहता है, न सोचते काम से समस्त प्राणियों में, गधे में, कुकुर में, हाथी में, गाय में, मनुष्य में, देवता में, गंधर्व में, सब में देखता है कि वही आत्मा और परमात्मा है, इन्हें सबके प्रति संभाव देता है। ये सभी भगवत दास है।
अच्छा। ये भ्रम भूत क्यों का है? ऐसी आत्माओं को भ्रम भूत,
इसी को
ब्रह्म चार विश्लेषण भी है ना उसके,
ब्रह्म को जानने वाला,
ये चार भूत का विश्लेषण भी है।
भूत, भूत माने होता है उसमें प्रवेश करने वाला, जिसमें ये सब आ जाता है, चिन्ह में अपने को समझने लगता है, प्रभु को चिन्ह में समझना लगता है, तो ये ब्रह्म हो गया। अब यहाँ से
ब्रह्म भौतिक पदार्थों से निकट होकर वो अब चिन्ह में ब्रह्म में प्रवेश कर गया, ये ब्रह्म
कर्म अभी जन्म मृत्यु से वो दोनों को समान समझने, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस में बराबर समझ,
समान
दोनों समान। एक आदमी आपको फिर एक आदमी पढ़ा दिया और एक आदमी ने आपको कोई बीस का लड्डू दे दिया, दोनों क्या चीज है? परमात्म की दृष्टि से दोनों मिट्टी है, इससे हमारा कोई लाभ नहीं है, हानि नहीं, बस इतना ही। जरा बीस के खाने से मर जाऊंगा तो ये भजन नहीं होगा, ये तो इसलिए ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा अनुशोचनकांति समा सर्वेश मद भक्ति लभते। ऐसे व्यक्ति को यदि भगवान के भक्तों का संग हो गया तो उसको पराभक्ति माने प्रेमा भक्ति हो जाए, और जिनको नहीं है, जो अपराध कर रहे हैं, भगवान के नाम काम में कुछ नहीं, भागवत नहीं पालने से क्या होता है?
क्या होता है? राजमार्ग
निराकार ब्रह्म का ध्यान करो, हरिद्वार में रहो, वृंदावन में रहने की क्या जरूरत? हरिनाम करने से कुछ नहीं होगा, समाधि लगा करके हम ब्रह्मास्मि ऐसा, ये लोग नामा अपराधी, वैष्णव अपराधी, भगवान के चरण।
क्या महाराज जी वैष्णव इन्हीं जड़ इंद्रियों से इन इंद्रियों को चिन्मय बना सकता है?
बनाने की जरूरत क्या है जब उसको चिन्मय है?
अच्छा,
यानी यदि हमारे अंदर में, इसके अंदर में प्रभु का सुंदर कृष्ण का रूप है,
अच्छा,
राधा जी के साथ में वर्तमान,
हाँ हाँ,
और हमारा उसी के अनुरूप गोपी का शरीर है या उनके दास दासी का स्वरूप है,
हाँ,
तो इस जड़ शरीर को चिन्मय होने की क्या जरूरत है?
अच्छा,
ये हट जाएगा वो आ जाएगा।
अच्छा,
नहीं समझा?
समझ गया।
जैसे
हाँ,
एक कपड़ा है,
हाँ,
उसके अंदर में एक घड़ी है।
अच्छा,
घड़ी इसमें ठीक चल रही है,
ठीक,
कोई कहता है कि ये कपड़ा ही घड़ी हो जाएगा,
हाँ, ऐसा नहीं
है,
हाँ,
क्या जरूरत है?
सही है।
उसके अंदर में कपड़ा हटा दो, घड़ी है,
सही है।
अच्छा, एक बात और समझ,
हाँ,
अभी जैसे यहाँ पर कोई एक व्यक्ति हो,
हाँ,
वो चाहता है कि हमारा यही शरीर चिन्मय हो जाए,
ठीक है,
हाँ, अच्छा, वो बुरा हो गया,
हाँ,
दांत टूट गए, झुरी पड़ गई,
हाँ,
और चेहरा कुरूप हो गया,
अच्छा,
और बहुत मलिन दशा हो गई,
हाँ,
तो उसको चिन्मय बना लो तो भगवान के पास में जाकर के क्या करेगा? दाढ़ी बड़ी हुई,
हाँ,
और किसी ने यहाँ पर थोड़ा सा चोट लगा करके काट दिया, तो उसको चिन्मय करने की क्या जरूरत?
क्या जरूरत है?
उसके अंदर में तो चिन्मय है ही है, इसको हटाने की चेष्टा करो।
अच्छा,
ये जड़ को चिन्मय मत बनाओ, ऐसा नहीं होगा। चिन्मय चिन्मय है, जड़ जड़ है, ये पंच भौतिक शरीर है, ये पांचों भूतों में मिलकर के ये दूर हो जाएगा, इसमें ये सुंदर सत्ता आत्मा की है, भगवान की है, वो प्रकाश।
अच्छा महाराज जी, अच्छा,
तो भगवान नहीं करते, उनका नाम ही ऐसा करा।
अच्छा, नाम करा देता,
भगवान को ब्लेम मत करना। भक्ति का ऐसा स्वरूप ही उसी से तमन बना, तो बकरे की क्वालिटी, किसको बकरे किसको कहते हैं? दिन रात बकरी के साथ में इधर उधर भोगों में लिप्त रहना और मेनी आना सब, ये तो ये उसका मांस जो खाएगा वैसा ही पूरेगा, मछली का जो मांस खाएगा वो तामसिक उसमें भी वैसा ही आएगा। शुद्ध दशक्तिक वस्तु खाने से भगवान को भोग दे करके निर्गुण होकर के इसमें एक शक्ति का संचार होता है, उसके खाने से धीरे धीरे ऐसा मन उसका तैयार होता है जो बुरे कर्मों में नहीं लगता, उसको सब समय अशांति नहीं होती, शांति में रहता है और भगवान का भजन करके आगे बढ़ते हैं, उसको एक ऊपर का बल देता है। ये प्याज लहसुन में एक ऐसी काम उठता है, यदि अधिक आदमी खाया तो उसको अपने काम को रोकना चाहिए।
गवार
एक अलग चीज है, वो तो बीस भी सांप का बीस उसको शोधन करके उसको लेते हैं, वो तो दूसरी चीज है। जैसे कि लहसुन है
उसी में फिर दवाई बनता है,
दवाई बन करके बना करके ये गठिया पात इत्यादि। जैसे आपको सर्दी खांसी हुई, आपने चाय पिया, आपको दूर हो गया सर्दी खांसी दूर, अब उसके बाद में फिर यदि आपने उसका सेवन किया तो वही रोग होगा जो आपको जो दूर किया, नहीं समझे?
समझ
रहे हैं?
समझ के जो जो दवा है वही रोग
बना देगी,
वो
चाहिए
ना
कि इसलिए होम्योपैथिक में जो औषधि दे दिया उसे रोग हो गया ठीक, कहने ये अब इसको बंद कर।
सिमिलर सिमिलिमम बोलते हैं महाराज,
कहते हैं
सिमिलर, हाँ सिमिल सिमिलिमम बोलते हैं।
इसी तरह से जो कोई भी चीज है, मान लेते जैसे आप ये सब चीज का सेवन करते हैं तो आपको रोग के लिए तो किया ठीक, और उसके बाद भी उसको सेवन करने लगे तो वही आपको लिए रोग का कारण। हमको ऐसा करना है कि हम हमारे अंदर में तामसी गुण है वो दूर है, लोगों से लड़ने झगड़ने काटने मरने मारने ये सब चीजें, और सात्विक गुण है लोगों के प्रति दया भाव, चित्त शांत रहे हृदय में सहिष्णुता रहे, इसे आपको भगवत भजन में फल मिलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने प्राचीन काल से ऐसी व्यवस्था
की।
दूसरी बात, एक आदमी मछली को काटता है, मछलियां सब मुनि शो करके तुम्हें काटेंगे, जरूर बदला लेंगी। आप जिन जिन चीजों का मांस खाते हैं वो फिर रूप धारण करके आपको उसी रूप में मारेंगे जैसे आपने मारा। मांस मैंने होता है मांस खाद, जिसको हम अभी मार करके खा रहे हैं वो भी हमको खाएंगे, रिएक्शन जरूर होगा। तो क्यों नहीं, ये चावल है, रोटी है, सब्जी है,
दाल
आने दिया है, दूध दिया है, और सब चीजें दी, तुम भी इसका हम सेवन करके और उन्हीं भगवान को देकर के सेवन करें जो हमारी बुद्धि वृत्ति ठीक रहे।
तो वो होते हैं विश होते हैं,
विश होता है ना,
विश होते हैं, उन्होंने वहां पे हमारे लिए
अमेरिका में एनालिसिस किया, ये अमेरिका में रहता है, बहुत वहां पर
रिसर्च कर
रहे हैं, रिसर्च कर रहा है, वहां की गवर्नमेंट से इनको काफी रुपए मिलते हैं 30,000 ना 35,000 अभी इस स्थिति में, और लेबोरेटरी में वहां पर ये किया गया है, तो उसकी तो बात मान लेंगे हम, साधु संतों की बात कोई नहीं मानेंगे क्योंकि तो लेबोरेटरी में आई है ना और वो आ जा रही है, और हम लोगों को लाखों कोटी वर्ष पहले से ये बताना है।
अब वहाँ पे अब वो लोग कहते हैं कि अब जो गाय का गोबर होता है उसमें बड़ी तरह गुण होते हैं,
बंदूक देता है मेरा हाइड्रोजन बंदूक देता है, गीता प्रेस गुरुपुर से बुक्स निकाली इसके अच्छा। इसलिए प्राचीन बातों को लेकर के चलना चाहिए, प्याज लहसुन बीड़ी सिगरेट गांजा भांग अफीम चाय चूरू काफी ये सब विष है, इनको निकाल करके दूर किया जाए, हृदय सात्विक होगा, भजन करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप करने लग जाए।
वंशा कौतकर्भस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताजनमेत कृत्यं दैतायनो विरह काकरयाजुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान् तुष्णे भक्त्यादिहीनापराधलक्षे चित्ताश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणा भजामि राधामरविन्दनेत्रान् स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यां ददामि राधां कर्णाभरद्रां ततो मम नास्ति गतिर्न कापि। अभी श्रीमान शुभानंद ब्रह्मचारी जी ने दसम स्कंध की कथा समाप्त कर एकादश स्कंध में इन्होंने प्रवेश किया। दसम स्कंध की कथा ही मूल है, कृष्ण के जन्म से लेकर और द्वारका में अंत ध्यान होने के बीच में जितनी प्रकार की लीलाएं हैं यही इन्हीं कथाओं का लोग स्मरण करते हैं, बाकी सब जितनी हैं
वो त्याग वैराग्य की शिक्षा के लिए, अथवा ये भी हो सकता है कि सब उनकी पुष्टि के लिए, प्रसन्न स्कंद की लीला तथा उनकी पुष्टि के लिए। इसलिए पहले नौ स्कंद तक की कथा अच्छी तरह से सुनी जाए तब दसम स्कंद को श्रवण किया जाए। और दसम स्कंद को कैसे श्रवण किया जाए इसके लिए उसका सार तत्व विवेचन एकादश स्कंद में हुआ है। कैसा हम लोग बोले पर भागवत में जो कृष्ण प्रेम बतलाया गया है, गोपियों का प्रेम, यशोदा जी का प्रेम, यही भागवत का मूल प्रयोजन है। ऐसा ही प्रेम हमको चाहिए, किंतु यह प्रेम कैसे मिलेगा उसके लिए साधन होना चाहिए। वो साधन दसम एकादश स्कंद में वो सब वर्णन किए। अभी नौ जगन लेकिन उसका उपाख्यान से इन्होंने संक्षेप में कुछ प्रस्तुत किया। नारद जी आए वसुदेव जी के घर तक, आकाश मार्ग से आ रहे हैं। लोगों ने देखा ये दूसरा सूर्य कहां से आ रहा है। निकट जब आया तो देखा जाए ये तो मनुष्य आकृति है, और जब आए तो कृष्ण के पिताजी वसुदेव जी ने कहा यज्ञ बंद कर दो, इसकी जरूरत नहीं है। यज्ञ का फल तो आ गया। यज्ञ का फल क्या है? साधुओं का संग। यदि साधुओं की कृपा हो गई तो समझो जैसे भगवान मिल गया, और कोई संत मिल जाए तो ऐसा समझो ये भगवान की कृपा का फल है। अब हमारा संसार से उद्धार होने वाला है, ऐसे संत मिल गए तो। इसलिए जितने प्रकार के साधन हैं उन साधनों में कृष्ण का प्रेम पाने के लिए संतों का संग प्रधान, बाकी सब कुछ वो कराने। नारद जी आए, उन्होंने कहा कि अब कुछ हरि कथा हमें सुनाए, तो उन्होंने आरंभ कर दिया नवजगेंद्र का उपाख्यान का। नवजगेंद्र का उपाख्यान किसके बीच में है? महाराज जनक और नवजगेंद्र माने कभी हभी अंतरक्ष पत्लायन प्रबुद्ध इत्यादि भक्त महाराज जी के छोटे भैया लोग। उनकी कोई जाति नहीं, जाति से ऊपर उठ गए हैं, सब प्रकार से भक्तिमान है, तत्व ज्ञान से परिपूर्ण है। उन्होंने जो बतलाया उनको उपदेश दिया नारद जी ने, और नवजोगिंद्र ने राजा जनक जी को बतलाया, उसका सार उन्होंने बतलाया। हरिनाम, हरिनाम को भगवान का स्वरूप समझना चाहिए। यदि आप जगत में कुछ भी नहीं किया और केवल हरिनाम किया किंतु सदाचार के साथ में, ऐसे साधारण रूप में नहीं, सदाचार के संपन्न होकर के भगवान नाम करना चाहिए, पापों से दूर रह करके, नमापराध से दूर रह करके, इन सब से रह करके यदि करेंगे तो कलयुग में कलयुग केवल नाम धारा, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व गतिरंज। इसलिए श्रीमद्भागवत में वहां पर बतलाया गया लब्ध्वासु दुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुष्यं अर्थदम अनित्यमपीह धीर पूर्णम जतेत न पतेत अनुमित्य जावत निशेषाय विषा फलु सर्वतस्यात्। खूब सावधानी से सुनेंगे, पार्वती जी को यहीं पर निदा गई। ये जहां आप कथा आरंभ किया तत्व की बात, वो जब सुना रहे हैं उनकी कथा भस्मासुर की, तो जग गई। महाभारत का युद्ध जब होने लगा तो उसमें जग गई, किंतु जब गूढ़ रहस्य की बातें आई समझने सोचने के लिए करने के लिए जो कैसे करना चाहिए, यहां तत्व का ज्ञान हुआ आरंभ, यही श्लोक आरंभ हुआ लब्ध्वासु दुर्लभम इदम बहु संभवान। लब्धा सुनते ही आलस्य आया, ऐसे किया दो चार आलस्य हमारे, उसकी बहन उसके लड़के पोते सब चले आए। वो पोते क्या है? आंखों में इतना भार हो जाएगा पलकें जो उसको रोक नहीं सकेंगे,
उस समय आलस्य आएगा, उसका भैया प्रमाद आ जाएगा, फिर थोड़ा सा ऐसे करने की इच्छा होगी, कभी ऐसे करने की इच्छा होगी, दो चार जम भाई आए, इतने में निद्रा जी आ गई उसकी मैया और आकर के आपको पकड़ लेगी। आप जैसे पार्वती जी सोचता, पार्वती जैसा लोग लब्धा सुदुर्लभ, इसलिए खूब सावधानी से 2 मिनट 4 मिनट तक के लिए एकदम साध लीजिए, तो जब सोएंगे नहीं। यदि यही अमृत है, इस अमृत से वंचित मत होइए, तो बतला रहे हैं लब्धा सुदुर्लभम इदम बहु संभवंति। देखो विषय खलु सर्वतः, ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसा कोई जन्म नहीं है जहां पर स्त्री और पुरुष न मिलते हों। शुकर को शुकरी जुट जाती है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख रुपया खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। दीवार अनायासे ही दौड़ते दौड़ते शुकर शुकरी मिल जाती है, कुत्ता को कुतिया भी, कुतिया को कुत्ता भी मिल जाती है, गधे को गधी भी, गधी को गधा। यहां तक कि सर्प बालू भालू बाघ जितने भी जीव हैं, देवता तक लो, गंधर्व तक लो, भगवान ने ऐसी ही सृष्टि की है। विषय फलु सर्वतस्या, सब जगह अभी नहीं मिलेगा तो हम विषय भी पालेंगे। वो विषय 4 है, क्या? आहार। ऐसा कोई जन्म नहीं है जिसमें वो नहीं खाता है। मनुष्य खाते हैं, गधे की भैंस खाते हैं, सुअर भी खाती है, और अपने अपने खाने में सबको ही एक टेस्ट होता है। शुकर को हलवा महन भोग जो यहां पर प्रसाद बढ़ता है, शुकर कह दे दो और एक बच्चे ने टट्टी कर दी तो वो कौन सा खाएगी? टट्टी खाएगी, ये नहीं खाएगी। बबले के पेड़ में कांटा होता है बबुल का, ऊंट को छोड़ दो और राबड़ी महान भोग इत्यादि रख दो तो वो क्या खाएगा? वो कांटा खाएगा और उसी में उसको तृप्ति होगी, उसके दांत में ही वो, मुख में वो चुभेगा, उसमें रक्त गरम गरम नमकीन आयकार, वाह वाह कितना सुंदर है। इसमें कुत्ते को खूब अच्छी चीजें खाने के दो और एक हड्डी पड़ी हुई है सूखी, वो किसको खाएगा? हड्डी, क्यों? रस उसमें तो है नहीं, खा करके अपने ही मुंह से रस निकलेगा, रस माने वो रक्त इत्यादि, और वो कट जाएगा मुंह और उसी को अच्छा। इसलिए ऐसी कोई भी जोड़ी नहीं है जहां पर कि आहार भोजन नहीं मिलता। हम लोग को बहुत परिश्रम करना पड़ता है, उन लोगों को परिश्रम नहीं करना पड़ता। निद्रा, ऐसा कोई प्राणी है जो सोता नहीं? और जितेंद्रिय व्यक्ति है जो अपने इंद्रियों को जीता नहीं है, तो वो उसका दो काम है प्रधान, खाना सोना और फिर खाना फिर सोना, यही दो काम। रावण के राज्य में यही होता था, खाना और सोना। ऐसा कोई प्राणी है जिसको नींद नहीं आती? हम लोगों को तो गोली खानी पड़ती है। लड़की की शादी है 4-5 दिन के बाद में, 10 लाख रुपये अभी चाहिए, नींद आएगी नहीं आएगी। घर में पति देव खूब बीमार पड़े हैं, नींद आएगी? बच्चा एकदम बीमार पड़ा है, नींद आएगी? कितनी तरह की समस्याएं, नींद नहीं आती ने? गोली खा लेते हैं 1-2, यदि कुछ बढ़ जाए मात्रा तो बस सोते ही रह गए, फिर उठेंगे भी नहीं। किंतु कुत्ते को सोने में परिश्रम लगता है, गद्दा चाहिए। सुअर महारानी को चाहिए गद्दा, कहां सोएगी? जहां पानी और गंदा नाला मिल गया, बस बड़े प्रेम के साथ में, मानो गंगा से भी तीर्थ पड़ा है, उसमें स्नान कर रही है, डुबकी ले रही है। तो उनको यही अच्छा लगता है। ये सब चीजें उपलब्ध है उन लोगों को, चाहे कोई भी प्राणी हो। तो आहार, निद्रा और डर, हम लोग को भी डर है। एक सांप को देख करके डर जाते हैं। ऐसा कोई प्राणी है जो सांप को देख करके नहीं डरता? सब लोग एकदम, बस एक मयूर है, मोर जो सांप को खा जाता है, और मयूर दूसरे से डरता है। सब एक दूसरे के प्राण के लाले पड़े हैं सब में, सभी लोग मृत्यु के लिए डरते हैं, देवता तक भी लोग।
और बच्चे इत्यादि का होना, स्त्री इत्यादि के साथ में रह करके बच्चों का पालन पोषण करना, ऐसा कोई है जो अपने बच्चे को पालन पोषण नहीं करता? उसके बच्चे नहीं होते? हाँ, एक विशेषता है, हम लोगों को बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लड़के नहीं है, बड़ी मुश्किल से यदि हो तो एक दो लड़के हैं। सुअर महारानी को देखिए, जैसे एक साथ में 16 बच्चे पैदा करती है, और वर्ष में जितने कितने बच्चे पैदा होते हैं है? कोई भी कंट्रोल नहीं, कोई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट भी नहीं है वहां। इसलिए ये सब चीजें मरने के बाद किसी जन्म भी जो नहीं जाएंगे, ये सब चीजें मिल जाएंगी। इस जन्म में भाई देखो, समझ समझ करके विषय भोग पड़े हैं दूसरे जन्मों के। इस जन्म में, मनुष्य जन्म में ये मत करो, क्या करो, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान। कोटि कोटि जन्मों के बाद में, करोड़ों जन्मों के बाद में ये मनुष्य जन्म मिला है। बहु संभवान थे माने बहुत जन्मों के बाद। हम कहेंगे, कोई नास्तिक कहेगा, इसकी क्या गारंटी है कि हम कोटि कोटि जन्मों के बाद में आए हैं, क्या गारंटी है? हम इस चीज को नहीं मानते। हम तो सीधे पहली बार आए हैं और ये इन भोगों को भोग रहे हैं, मर जाएंगे, शरीर चला जाएगा, फिर कोई इस जगत में नहीं आने वाला है, बस यही पहला और अंतिम जन्म है। इसलिए खूब कमाओ खाओ, ईट ड्रिंक एंड बी वेरी खूब आराम से रहो। आते कि भैया तुम विचार करो खूब अच्छी तरह से, एक लड़का अंधा क्यों हो गया, एक लड़का जन्म से ही क्यों अंधा हो गया, एक बिला के घर में जन्म लिया एक लड़का और एक दरिद्र के घर में, क्यों? उसने तो इस जन्म में तो कोई कर्म नहीं किया, तो कर्म के पहले ये कैसे ऐसे हो गया, इस पर विचार करता है। एक बात और है, एक आदमी ने हमारे गुरु जी से पूछा, हम लोग उनके साथ में गुरु जी के साथ में जा रहे थे कलकत्ते मथुरा से, तो एक आदमी मिल गया, तो उसने गुरु जी से पूछा, कहा भगवान क्या है, इसका प्रमाण क्या है? तो गुरु जी ने कहा, बात बात बहुत ठीक कहता है, ये युक्ति की बात है, तो एक छोटी सी बात मैं तुमसे पूछूंगा, तुम बिगड़ना मत, तुम बतलाओ तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तो पिताजी का नाम कोई प्रमाण दो जिससे कि ये मालूम पड़े जैसे ये पिताजी तुम्हारे पिताजी हैं, कोई भी प्रमाण दो, भगवान को हम पीछे हम प्रमाण कर देंगे, तुम बतलाओ ये तुम्हारे पिता ये हैं, इसका कोई प्रमाण है? तो बहुत सोचने लगा, सोच करके कोई उत्तर नहीं आया, तो बोला जी मेरी मैया ने कहा। अरे मैया यदि झूठ बोलती है तो, मैया को तुम विश्वास करता है कहां करता है, तो कुछ विश्वास की बात आई। तो तुम ये विचार करो, जो तुमने देखा नहीं जन्म के पहले ये कौन तुम्हारे पिता हैं, और मैया झूठ बोल रही है कि नहीं, इसके लिए भी तुम कोई प्रमाण अपनी मैया से नहीं मांगता, मैया देगी कोई प्रमाण? जैसे ये तुम ही, ये हमारे पति से ही तुम पैदा हुआ है, प्रमाण कोई देगा? हम जो कह रहे हैं इसको मानो, यदि तुम हमारा पुत्र है। उसी प्रकार से संत महात्मा लोग वेद उपनिषद श्रुति ये कहती है ये भगवान है, हम उसी से निकले हैं, इसलिए इसको मानना चाहिए। मैया के स्थान पर मैया झूठ बोल सकती है, श्रुति वेद उपनिषद ये झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए करोड़ों करोड़ों बार हमारा जन्म हुआ है, किंतु कभी भी भगवान को भजन करके इसे मुक्त नहीं हो सके। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इस जन्म में यह अर्थ को दे सकता है, अर्थ माने क्या, परमार्थ को, माने ये संसार में ये दुख कष्ट मृत्यु का ये जो सिलसिला चल रहा है, इस मनुष्य जन्म में हम इससे पार पा सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। किंतु ये मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ होता हुआ भी कोई ठीक नहीं कि कब चला जाएगा। क्षण भंगुर महाराज परीक्षित 7 दिन तक बचे थे, 7 दिन के अंदर में कोई यानी ये गारंटी है कि 7 दिन के अंदर में नहीं मरेंगे, 7 दिन के बाद नहीं मरेंगे, और बच भी सकते हैं तो भी सकता है, किंतु 7 दिन के अंदर नहीं मरेंगे। हम लोगों का कोई गारंटी देकर के खड़े होकर के उठ करके कह सकता है जो हम लोग 7 दिन तक बचे रहेंगे?
या कल बचे रहेंगे कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मनुष्य जन्म दुर्लभ होने पर मिला और इसमें भगवान का भजन किया जा सकता है, बैठ करके हरि कथा सुन सकते हैं, गधे घोड़े ये सब नहीं सुन सकते, यहां तक कि देवता लोग भी नहीं आ सकते। और की तो बात क्या, आप लोगों के समाज में बहुत जो धनी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, इनका समाज में बहुत आदर है, कोई उसमें से आया है? नहीं आएंगे। कहीं जाइए इन साधारण लोगों में मैं क्या बैठू, एक मंत्री आकर के जो साधारण आप ही लोगों ने चुना, साधारण एक व्यक्ति, और इसमें आकर के चुपचाप बैठ करके सुंदर प्रेम के साथ में, ये कभी संभव नहीं। तो इसलिए कहते हैं लब्धासु दुर्लभम इदम बहु संभवन्ते मानुषम अर्थदम अनित्यम अपि है, ये अनित्य भी है शासन, अर्थ को देने वाला है। अरे अधिक की तो बात क्या, एक क्षण भी भगवान का स्मरण किया जाए तो भौतिक सागर से ये पार हो जाएगा, जन्म मृत्यु से पार हो जाएगा, एक क्षण का भी समय मिले। एक राजा थे, वो देवताओं के साथ में अस्त्रों के युद्ध में देवताओं का पक्ष लेकर के गए और देवताओं को उन्होंने हराया, क्या नाम था, खटांग ऋषि, वहां पर गए, सूर्यवंशी राजा थे रामचंद्र जी के वंश में पहले, देवताओं अस्त्रों को परास्त किया और बोले, देवताओं ने कहा जी आप कुछ लीजिए इसके बदले, अच्छा एक बात कर हमको मुक्ति संसार से दे दो, ये तो हम नहीं दे सकते, तो और हमको कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, भगवान के चरणों में प्रेम और मुक्ति हमें दे दो संसार से, ये नहीं दे सकते। अच्छा ये बताओ कि मेरी आयु कितनी है, अब 24 मिनट है केवल, अच्छा तुम जल्दी से हमको पृथ्वी लोक में, विशेष करके वृंदावन धाम के निकट कहीं हमको जल्दी से उतारो, जमुना के किनारे गंगा के किनारे, बस साथ ही साथ उतार दिया और साथ ही साथ उन्होंने चित्त लगाया भगवान ने और कहने लगे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम, ऊपर से विमान उतरा और उनको लेकर के बैठ गया। एक दो मिनट की ही बात है, लाखों इसके प्रमाण हैं, एक दो नहीं। इसलिए कहते हैं पूनम जते तना पते समित अनुमित्यु जावत, जब तक ये शरीर पतन नहीं हो जाता, जब तक कि भगवान ने सुंदर शरीर दिया है, काया दी है, इसमें बल दिया है, दो सुंदर सुंदर आंखें दी हैं, सुंदर सुंदर कान दिए हैं, कान भी पूरी तरह से सुन रहे हैं, आंखें भी देख रही हैं, नाक दिया उसे सुगंध ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं वो भी ठीक से चल रही है, पैर हाथ सब कुछ ठीक है, अरे भाई तब तक तुम मर नहीं जाता, तब तक ये मिले हुए, इसी के बीच में तुम भगवान का भजन करके चले जाओ, अपना कल्याण कर लो, एक मिनट के लिए अभी इधर उधर मत दो। यदि कहो जैसे हमको संसारिक भोग भोगना है तो ये मनुष्य जन्म के बाद में किस जन्म में भी जन्म लेगा तो वो तो तुमको मिल ही जाएगा, स्त्री पुत्र परिवार धन संपत्ति ये तो मिल जाएगी, इस मनुष्य जन्म में तुम केवल मात्र भगवान का भजन करके इस जगत से चले जाओ, कैसे कल्याण होगा। उत्तम सेहत किसको कहते हैं, कैसे जीव का कल्याण होगा, इसके लिए बतलाया, इसको इन्होंने के श्लोक बतलाया, शुभ नम सुभद्राणी रथांग पाणी जन्मान कर्मानि च ज्ञान लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन विलज्ज विचरे तसंग। संक्षेप में बतलाया, यदि कल्याण करने की इच्छा हो, खाओ पियो सब कुछ करो, संसार में रहो, अनाशक्त होकर के विचरे असंग, असंग माने क्या, आसक्ति मत रखो कर्तव्य के लिए, ये समझो कि ये जितने भी हैं हमारे परिवार के लोग ये कृष्ण के दास दासी हैं, मैं भी कृष्ण का दास दास, इसके नाते हम उनका कृष्ण की दौड़ता से उनका पालन पोषण जो कुछ कर रहे हैं हम कर रहे हैं, किंतु हमको इसमें क्या करना है। एक समय मैंने किसी से पूछा, अच्छा भाई तुम इतना परिश्रम करके नौकरी चाकरी वाणिज्य व्यवसाय किस लिए करते हो, तो रुपये के लिए, रुपया क्या होगा किसके लिए, तो अच्छी तरह से खाएंगे मौज करेंगे, अच्छा मान ले कि तुम नहीं खाया तो क्या होगा, तो मर जाएंगे, तो खाता किस लिए है, तब जब मर न जाए, कपड़े किस लिए पहनता है? तो इसलिए कि मरने जाए, ठंडा ना लग जाए। तुम जीवित किस लिए रहना चाहते हो? ताकि मैंने आज तक जीवन में सोचा नहीं कि किस लिए हमको जीवित रहना है। इस पर विचार करो। मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है, थोड़े दिनों के लिए दिया है, किस लिए दिया है, कैसे हमारा कल्याण होगा? ये मनुष्य जन्म में होगा, फिर कहीं नहीं होगा। स्वर्ग में जाएंगे वहां पर भी नहीं होगा। इतना सुख आराम मिलेगा कि नहीं है, किसी भी दूसरी जोनि में नहीं होगा। इसलिए तू न मजते इतना पते अनुमित तुजावत, जब तक शरीर का पतन नहीं हो जाता इसी के बीच में अपना कल्याण कर लो। नहीं अभी मैं नहीं करूंगा, क्यों? मुझे 40,000 रुपया महीना मिल रहा है, अपनी नौकरी कर लू इसके बाद। आज बेटा तुम कल मर जाएगा तो तू नौकरी कर रहा ये भी कर दो, इसके बाद में देखा जाए। नहीं हमको फुर्सत नहीं है, दिन भर उसे में लगा रहा। फिर क्या होगा अंत में? उसका एक काना कौड़ी भी लेकर के साथ में नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। एक आदमी ने संसार में जो कुछ भी चीजें हैं सबको संग्रह किया, करोड़ों रुपए उसके अरब खरब हो गए। उसने स्विट्जरलैंड के बैंक में 85 अरब या कितना भी रुपया जमा कर दिया और उसने काफी जमीन जायदाद ली और एक मोटर कार की कंपनी बना दी अपनी, जिसमें लाखों करोड़ रुपए रोज की आमदनी है। और भी उसके घर में बच्चे इत्यादि सब हैं, पर पूर्ण रूप। इतने में एक संत आया और बोला, अच्छा ये बतलाओ अब तुम्हारी मृत्यु 5 दिन में होने वाली है, जरूर होगी मैं जानता हूं, मैं यही रहता हूं, देखो ये 7 दिन में 5 दिन में तुम्हारी मृत्यु होती है, कि मुझको क्या करना चाहिए? तो तुम ऐसा करो, तुम ही बतलाओ जो तुमने इतना परिश्रम करके इतना रुपया पैसा धन संपत्ति और ये सब किया, तुम राष्ट्रपति रह चुके हो, प्रधानमंत्री रह चुके हो, बड़े बड़े फोर्ड कंपनी के मालिक रह चुके हैं, अब तुम ये तुम्हारे पास में तो काफी रुपया पैसा है, कहां जाने के समय में तुम्हारा स्वर्गलोक में जाना है, किंतु वहां एक सुई धागा ले जाना है, कोई जरूरत है? सुई धागा लेकर के जा सकते हैं कि नहीं? अरे सुई धागा यदि लेकर के नहीं जा सकते तो इतना संपत्ति जो इतना परिश्रम से कमाया है किस लिए? पूछो, एक सेकंड के लिए जीवन दान करेगा वो? नहीं करेगा। किस लिए कर रहे? इसलिए इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए तुरंत जते, इसलिए जल्दी से यत्न करो कि मैं भव सागर को पार होकर के कृष्ण की सेवा कर सकूं। जीव का स्वरूप यही है, कृष्ण का दासत्व करना, इसे बढ़कर के और कुछ नहीं है जीवों के लिए अपना धर्म। इसलिए ये मनुष्य जीवन रहते ही इसको करना पड़े। इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा? एक पैसा भी नहीं तुम्हारे कमाई का, वो सब तुम खाओ पियो, जो हम कहते हैं वो करो, तुम्हारा जैसा जो कुछ है बना रहे, हमको उसमें से एक पैसा नहीं चाहिए। तुम हरे नाम करो, हरे नाम हरे नाम हरे नाम अयो केवलम कलो नास्ते वो नास्ते। हरे नाम किसको कहते हैं? हरे नाम किसको कहते हैं? अच्छा हमारे साथ में बोलो, मैं आगे कहूंगा तुम पीछे कहना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसी को कहते हैं महा और सब मंत्र हैं। कलयुग का सबसे बड़ा प्रभावशाली, जो कभी भी इसका प्रभाव नहीं क्षीण हो सकता, कुछ जरूर जरूर ये प्रभाव डालेगा यदि कोई ये व्यक्ति करे। कोई कुछ भी ना करे उसी को कृष्णचंद्र जी बतला रहे हैं, किसको? उद्धव जी को। भागवत में मैंने तो अपने शब्द में कहा कि तो इसके श्लोक सब जितने हैं ना सब इसके ऊपर में है, जो कुछ मैंने कहा ये भागवत के श्लोकों का तात्पर्य बताया। द्वारकापुरी की बात है, जानते हैं कि द्वारकापुरी के पास ही में समुद्र है, प्रभास भी वहीं पर है। प्रभास एक पुण्य तीर्थ माना जाता है। उसी के किनारे बहुत से ऋषि लोग तपस्या कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। उसमें नारद जी हैं, उसी में दुर्गाशा ऋषि हैं, उसमें और उस समय के जितने बड़े बड़े ऋषि थे, कृष्ण का दर्शन भी करेंगे और साथ साथ में आराधना भी होगी। कलयुग का प्रभाव हमारे ऊपर में नहीं आएगा, इसलिए द्वारका से थोड़ी ही दूर पर नारद जी जैसे बड़े बड़े अनुभवी ब्रह्मवेत्ता ऋषि लोग, जो किसी को कह दे अभी मर जाए तो मर जाए, अभी तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अभी जी जाओ, ऐसे लोग ब्रह्मर्षि लोग वहां पर आराधना कर रहे थे। इतने में कुछ मन चले द्वारका के राजपुत्र लोग, कौन राजपुत्र? सांब जी। सांब जी इतने ब्यूटीफुल थे, इतने सुंदर थे, उनको स्त्रियों जैसा लहंगा और चुनरी पहना जाने पर सभी लोग सोचेंगे ये बड़ी किशोरी लड़की है, बड़ी सुंदरी, और उसको देखकर के कोई भी पुरुष मुग्ध हो सकता था। बड़े गौर वर्ण के, बड़े कोमल पियंग, कृष्ण के जितने भी पुत्र और नाती हैं सब में सुंदर ये सांब था। बच्चों ने किया किया खेल ही खेल में, उसके पेट के ऊपर में तवा बांध दिया, पेट ऊंचा कर दिया और कपड़े से बांध दिया और उसको चुंदरी और लहंगा पहना करके उसको चुंदरी को जरा ढक दिया, घूंघट निकाल दिया और बच्चों के साथ लेकर के सब बच्चे उनके साथ में गए जगुकुल के समुद्र के किनारे जहां तक के ऋषि महर्षि लोग थे उनके पास में चले गए। बड़ी लजाती धीरे धीरे, जैसे स्त्रियां चलती हैं नौ विवाहिता, ऐसे धीरे धीरे उसको ले जा रहे थे, चल गए उनके सामने गए। पूछा ये बड़ी सुख चाह रही है, घर की वधू है, अभी हाल ही में इसकी शादी हुई है और इसको गर्भ हुआ है, ये गुर्भत नहीं निकालती, नहीं उठाती, आप इसको बतला दीजिए इसको बच्चा बेटा होगा या बेटी होगी। आजकल पहले से जानने के लिए मशीनें लग रही हैं शायद, यदि लड़की है तो इसको वहीं पर समाप्त कर दो, लड़का है तो ठीक है, अरे लड़कियां बेसी सेवा बेटा से करेंगी, बेटे तो जन्म से ही कुछ न कुछ आदेश करेंगे, विवाह होने के बाद में भी चले जाएंगे, लड़कियां रहेंगे तो कुछ आदर करेंगे, मैया का सब प्रकार से सहायता सेवा करेंगे, बाप भी थी वो बाप कुछ सुनेंगे। तो आजकल ऐसी ऐसी सब चीजें निकली हैं, वैज्ञानिक और साइंटिफिक चीजें, जो पहले से गर्भों को देख लें बेटा है कि बेटी है या क्या है, और उसमें जरूरत यदि हो तो बेटे को या बेटी को भी मार दो उसी में, इसको हत्या इत्यादि नहीं मान रहे आजकल, है बहुत बड़ी भारी हत्या। तो वो लोग जाकर के उनसे दिल लगी करने लगे, जैसे आजकल हम लोगों से बंगाल में हम जाए हैं तो ऐसे ही कहते हैं, जैसे ये बात बंगाल में इतना नास्तिकपन आ गया है, विशेष करके ज्योति के नाम पर अंधकार है वहां, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, वो ज्योति नहीं बल्कि अज्योति, धर्म से उनका कोई भी संबंध नहीं, अपनी संस्कृति से कोई संबंध नहीं, सत्य से कोई भी संबंध नहीं, सब लोग नास्तिक हो जाएं, गाय भैंस सुअर सभी खाएं, कोई भी बात नहीं, विवाह की प्रथा उठा दो, जब इसके साथ में रह लिया फिर दूसरे के साथ में रह लिया, इसमें क्या बुराई है, यदि जानवर ऐसे हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते, और स्त्रियां इतनी स्वतंत्र जो एक के पास में रहेंगी ये तो बहुत ही बुरी बात है, स्त्रियों को स्वाधीनता मिलनी चाहिए जैसे पुरुषों को स्वाधीनता, तो ठीक है इसके साथ में ऐसा भी यदि उनकी चलती तो कर दो जैसे पुरुष लोग भी गर्भ धारण करें स्त्री अब गर्भ धारण नहीं करें, किंतु ये सब तो चीजें होगी नहीं। तो इस तरह से साधुओं को तंग करने की कुछ लोगों की होती है, यही कुछ जानते तो हैं, पढ़े लिखे तो हैं नहीं, इसलिए ऐसा समझते हैं और तंग करने की लालसा। आप लोग अभी हरिनाम करने लग जाए ना, अभी हरिनाम की माला लेकर समाज के जितने अच्छे लोग हैं सब चले जाएंगे, हरिनाम की माला लेकर के कर रहे हैं, सब लोग तंग करेंगे, और यदि सिनेमा बायोस्कोप जाएं, गंदी आपको में जाएं, नाइट क्लबों में जाएं तो ताली बजे, वाह 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 ये बहुत अच्छी बात है। नाइट क्लब मैंने क्या, एक स्त्री दूसरे पति के साथ में, दूसरा पति दूसरे के साथ में, बस शराब पी लिया और ऐसे करते हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने सोचा जैसे ऐसे ही कोई साधारण महात्मा लोग होंगे जो पेट पालने के लिए साधु संन्यास, मूल मरे भय संन्यास, स्त्री मर गई तो उन्होंने देखा जी से कोई अब घर पर चलने वाला है नहीं और घर में चूहे भी नहीं रहते। क्यों नहीं रहते घर में चूहे? क्यों नहीं? अनाज ही नहीं है खाने के लिए, तो रहेगा कहां उसके बाद? और वर्षा जितनी होती है वर्षा की एक बूंद भी बाहर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? छप्पर टूटा हुआ है सब उसी में आता है। स्त्री कैसी है? बड़ी रुपसी, काली कलूची। वाणी कैसी? कौवे जैसी। और पति को रोज झाड़ू देती है पीठ पर, खाने का भी कुछ नहीं है तभी विरक्ति नहीं होती। ये बड़े आश्चर्य की बात है। तो वो बतला रहे हैं साधु संतों को ऐसा ही समझा, ये भजन का बल नहीं है, कुछ जानते नहीं है, बार बार तंग करें। अरे बताइए महाराज जी, बड़ी श्रद्धा से आई है और हम लोग भी आए हैं, इसकी जानने की इच्छा हो रही है, ये बेटा होगा कि बेटी होगी। तो दुर्दशा जी उसमें से निकले, क्या पूछता है स्वामी जी, ये बेटा होगा कि बेटी? तो ये बेटा बेटी नहीं होगा, कुल का नष्ट करने वाला ये मूसल पैदा होगा। इतना कहा तो उनको डर लगा, वहां से भगे। देखा जी ये तो महापुरुष ही है, अग्नि शर्मा जी है ये दुर्भाषा जी, और इसकी बातें सभी ठीक होती है। बस वहां से भगे, भग करके थोड़ी दूर जब आए तो देखा जी इसका पेट अब खोल देना चाहिए। तो पेट खोला तो देखा जी सचमुच तवा के नीचे, कपड़ों के नीचे एक इतना मूसल शाम लगा हुआ लोहे का। अब क्या किया जाए? उग्रसेन जी के यहां पहुंचे, कृष्ण के पास में नहीं गए, उग्रसेन के पास में पहुंचे। उग्रसेन जी से कहा जिससे ऐसी ऐसी बात हुई, अरे ये तो कुल का धन सब होने वाला है, अब ये कुल बचेगा नहीं, ऋषियों को तुमने तंग किया। अच्छा ऐसा बात करो, इसको तो जला दो ये मुसल के लकड़ी को, और जो लोहे वाला स्थान जो चारों तरफ से है उसको घिस घिस करके एकदम घूल बना दो, और समुद्र में बीच में जहाज में ले जाकर के छोड़ देना। जो ठीक है ऐसा ही उग्र सिंह ने अपने आदमियों के द्वारा मुसल को जलवा दिया, और जो रहा लोहा उसको घिसवा दिया। जब चूर्ण एकदम हो गया तो समुद्र में ले करके बहुत दूर नौका में बैठ करके उसको फेंकवा। समुद्र कुछ लेता नहीं है ना? वो आज नगद कल उधार की बात नहीं जानता, जो कुछ दो वो लौटा देता है। कोई भी चीज दे दो आदमी उसमें जाए, आदमी को ले लेगा, फिर आध घंटे के बाद में 15 मिनट के बाद में उसका सार ले लेगा और शरीर को छोड़ देगा। पूरी में और सब जगहों में हम लोगों ने देखा, घाट पर बैठे हैं कोई और इतने में समुद्र की लहर आई और उनको ऐसे लुटा दिया और लेकर तो भीतर ले गया, फिर वहां से कुछ देर के बाद में निष्प्राण उनको छोड़ दिया। अब कोई मतलब नहीं, इस पर से उन्होंने भीतर में दे दिया। वो उसकी चूड़े समुद्र की लहरियों पर खेलते खेलते फिर जमीन में आ गई और वहां पर प्रभारी बने एक हो गया जिसमें कि सरकंडे हो गए। और इधर में उस बाकी जो बच रहा था उसको एक मछली निकल गई जो घिसा नहीं जा सका। यहां तक तो ये हो गई। ब्रज में बड़े उत्पात, वहां पर उत्पात होने लगे। उसी समय में कृष्ण जी चिंता कर रहे हैं, अब हमको ये लीला संवरण करना है। हमने कौरव पांडवों के युद्ध में जितने आपताई, जितने स्त्रियों पर दुर्व्यवहार करने वाले थे, जितने नास्तिक थे, जितने अधार्मिक थे, जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सबको हमने शांत कर दिया। किंतु हमारा जगकुल अभी तक बचा हुआ है, हमारे जाने के बाद में ये कहीं विश्व को नष्ट न कर दे, इसलिए कांटे के द्वारा कांटा निकाल करके कांटे को भी फेंकना है। किस उपाय से फेंके, इस प्रकार से व्यवस्था करके सोच रहे हैं। इतने में उद्धव आ गए। उद्धव ने देखा जाए कृष्ण बड़े गंभीर हैं। उस समय में त्रेय ऋषि जी आ गए, उन दोनों को लक्ष्य करके कृष्ण ने उनको ऐसा आभार दिया कि अब मैं जगत में नहीं आता और हमारे जितने परिकर हैं बैकुंठ वाले, इनको किसी न किसी हालत में वहां पर ले जाना है, लड़ाई का कुछ भान दिखला करके। और सत्सरी जी वहां पर पहुंचा दिया, अब मैं ही सत्सरी बैकुंठ के ऊपर मैं गोलोक वृंदावन में चला जाऊंगा। उसी समय में
उद्धव जी को लक्ष्य करके कृष्ण ने जो उपदेश दिए हैं वो श्रीमद्भागवत की मणियां हैं। हम लोगों के लिए यदि उपदेशों को सुने और उनको काम में लाए तो सहजी भगवान को पाया जा सकता है। भागवत का ये प्रबंध किया गया, व्यवस्था किया गया है, सात आवरण है पृथ्वी का आवरण इस भूमंडल के बाद में, सात आवरण। क्या क्या वो आवरण है? मट्टी का आवरण, जल का आवरण, अग्नि का आवरण, इसके बाद में वायु का आवरण, आकाश का आवरण, मन और बुद्धि का, ये सात आवरण है। इनको पार किए बिना भगवत राज्य में नहीं प्रवेश कर सकते। एक एक दिन में एक एक आवरण दूर होता जाएगा, इसलिए ये सात सप्ताह की बात कही गई। स्थूल बुद्धि वाले लोगों के लिए जो भगवत में प्रवेश नहीं कर सकते हैं प्रेम में, उन लोगों के लिए कहा गया एक एक दिन में एक एक आवरण हटेगा। जैसे वो प्रेत था ना, उसका भैया धुंधकारी, वो एक बांस में समा गया जिसमें कि सात गांठें थी, और एक एक दिन की कथा होनी हुई शाम को जब समाप्त होने पर एक गांठ चट फटी और वो दूसरे में आ गया। ऐसे सातों दिन में वो भी फट गई, पार होकर के देखा जब विमान उनके लिए खड़ा। उसी तरह से सात दिन में भागवत की कथा कही गई, इसलिए कि एक एक आवरण नष्ट हो। किंतु मूल इसका तात्पर्य बड़े प्रेम के साथ में यदि भागवत की एक कथा भी सुनी जाए, एक श्लोक, आधा श्लोक, आधे का पुनराग, कुछ नहीं है तो कृष्ण नाम उसका सार है, राधा नाम उस कृष्ण नाम का भी सार है, ये राधे कृष्ण नाम किया जाए तो ये भागवत भी पढ़ना हो गया। इसके अतिरिक्त कलयुग में कोई भी हमारी रक्षा करने के लिए संभव नहीं है, इस चीज को आप लोग समझेंगे। संसार में रहिए, सब कुछ कहिए, अनाशक्त होकर के कर्तव्य के लिए रहिए और भगवान का नाम की उसमें कैसे नाम करना चाहिए उसके लिए ये बतला रहे। न रोध यति योगो मान योगो न शांख धर्म उद्भव एवज न श्रद्धाय तपो त्यागो निष्ठापूर्ति न दक्षिणा भटानी जग छम दार्शी तीर्थानी नियमाजमान यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगो सत्संग ही दैतया जातधाना मृदा खदा गंधर्वा अस्पर्शो नागा सिद्धा चारणा दुह्यका बहु मत पदम प्राप्त स्वास्थ्य कया भव विष पर्वा बली बली बाणी मयाश्च विभीषण सुग्रीव हनुमानो रिछो गजो गृद्धो बलित पथ व्याघ कुब्जा ब्रजे गोप्यो जग्या जग्यपत्ना अथा। कह रहे हैं देखो, मैं श्रीमद् भागवत का सार कह रहा हूं, कृष्ण प्रेम को लाभ करने के लिए मैं तुमको संक्षेप में बतला रहा हूं। वो बतला रहे हैं देखो, संसार से तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। योग लोग कहते हैं कि योग करो, योग माने कोई हिमालय पर्वत के पास में कोई योगी आजकल हैं जो अमेरिका और चारों तरफ में उनके योग की शिक्षा दे रहे हैं। क्या नाम है उनका? महेश योगी। महेश योगी कोई बहुत सब योग का ये करें। आजकल जगत देखते हैं कि विश्व में सर्वत्र योग का क्लास चल रहा है। मैं यहां पर टहलने के लिए जहां जा कभी आता हूं तो यहां वहां चलने देखते हैं कि ऐसा कोई भी मैदान नहीं है जिसमें योग का क्लास नहीं चल रहा है। सांस फुलाओ, सांस निकाल दो, हाथ ऊपर ले जाओ, नीचे ले आओ, फिर ऐसे करो, ये सब योग है। किसके साथ में योग कैसा होता है? एक होता है योग, एक होता है ऋण। जो किसको कहते हैं? दो वस्तुओं के मिलने को कहते हैं जो। आरण्य का कहते हैं किसे? एक 500 रुपया है, उसमें से 100 रुपया निकाल तो कितना बचा? 100 बचा। और जो एक और एक मिलकर के एक होता है ना, एक पर एक रखने से 11 होगा, किंतु एक से एक को जोड़ दो तो एक ही हुआ ना। बहुत से लोग कहते हैं भारतवर्ष में बड़े बड़े पंडित विद्वान लोग एक में एक को जोड़ तो एक ही होता है। कौन कहता है? अद्वैतवादी लोग कहते हैं, शंकराचार्य के, वो कहते हैं एक और एक एक ही होता है, किंतु ऐसा होता नहीं। शंकराचार्य की एक बार मैया बगीचा लगाया बैंगन का, उसमें हजारों बंगल बड़े सुंदर सुंदर बैगनी रंग के झूल रहे हैं। लोग किसी को आ जाए तो उस एक दिन उसके घर में अतिथि कुछ आए संत लोग। मैया ने कहा, बेटा तुम बगीचे से वो खेत से 10-15 बैगन अच्छे अच्छे ले आए, कोई सो मत, आंख मत बंद करो, योगाभ्यास करने से नींद आ जाए। कलयुग में ये नींद आ जाना ही योगाभ्यास है। तो मैया ने कहा जो ले आओ। शंकराचार्य अभी छोटा 5 वर्ष का बच्चा अभी पढ़ रहा है, कंग खंग ये सब पढ़ रहे हैं संस्कृत के, गच्छति तीतः अंति सीतः निवहम इत्यादि पढ़ रहे हैं। वो गया बगीचे में, बड़ा बुद्धिमान लड़का, 11-12 वर्ष की उम्र में विश्व में चारों तरफ से बड़े बड़े पंडितों को परास्त, किंतु एक भी भक्त पंडित को नहीं, किनको, जोगी ज्ञानी कर्मी इन सबको हरा। तो वो गया बैगन लाने के लिए, तो एक बैगन देख करके ले आए। मैया कहा बेटा क्या बात, बैगन खेत में नहीं है? जरूर है, तू एक ही लाया, एक ही था तो एक ही था, तो क्या रात में चोरी हो गई, इतने बैगन थे? दौड़ करके कुछ डर करके गई, देखा जे चारों तरफ में एक एक पेड़ में हजारों हजारों सब बैगन झूल रहे हैं। कहे बेटा तुमने एक ही क्यों लाया? तो मैया तुमने कहा था जब बैंगन लाने के, मैं बैंगन में गया तो देखा एक 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 सबने देखा तो एक ही एक, दो तो मैंने देखा ही नहीं। तो उसने कान पकड़ा और एक थप्पड़ लगाया, बोले ये एक के बाद में दो नहीं आता, दो के बाद में तीन, ये मास्टर ने तुमको नहीं पढ़ाया, बस एक 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 है, अहम एक, एकम एव अद्वितीयम, बस एक ही वस्तु है, ब्रह्म है सब। ये बात गलत है। यदि भक्ति चाहिए, भागवत को समझना है, इस विचार को छोड़ना पड़ेगा। बहुत मिल करके तब एक होता है, जैसे राष्ट्रपति हमारे यहां एक है, है ना, तो आप दूसरा कोई है नहीं ना, मंत्री लोग नहीं है 500-600, अब परिषद नहीं है, घर नहीं है, प्रजाएं नहीं है, एसपी नहीं है, एजी नहीं है, या कमांडर नहीं है, सेनाएं नहीं है, भारतवर्ष में कितने कितना क्या क्या चीज ये सब नहीं है, सब मिला करके जैसे एक राष्ट्रपति होता है, एक राष्ट्र का संचालन करने वाला, ऐसे ही सब मिला करके जीव जगत अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड सब मिला करके एक भगवान शब्द होता है, सबके वो मालिक है। इसलिए एक में बहुत्व है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी और डाइवर्सिटी इन एक में बहु। यहां पर एक धर्मशाला है, मंगल क्या, मंगल धर्म सनातन धर्म, एक बड़ा भारी हॉल घर है, उसमें सभी जितने लोग हैं मथुरा वृंदावन से साधु संत लोग आए हैं और यहां के श्रद्धालु लोग उसमें जाकर के मिले हैं। आप लोग सभी मिलकर के हम लोग एक हो गए, न कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 700, 800, 1000 आदमी मिलते गए, आते गए, संख्या बढ़ती गई। इसलिए एक ही नहीं, ये भगवत भक्ति में बाधक है। इसलिए इस विचार को छोड़ करके, मायावाद और द्वैतवाद को छोड़ करके, ये योग की जरूरत नहीं है, योग जरूरत है, इसलिए पहले है कर्म योग, इसके बाद में ज्ञान योग, इसके बाद में भक्ति योग, इस योग की जरूरत है भगवान से मिलने के लिए। योग हम भगवान के साथ में मिलेंगे, उनकी सेवा करेंगे इस भावना के साथ में, आजकल ऐसा कोई योग नहीं। इसलिए कलयुग में योग के द्वारा भगवान प्रसन्न नहीं होते। हाथ पैर के कसरत से, गर्दन के कसरत से, पैर के कसरत से, एक आदमी एक पैर को नीचे रख करके दूसरा पैर यहां तक उठाया, मुझे वाह वाह ताली बज गई, क्या हुआ, इसने पैर उठा करके एकदम बराबर कर दिया, तो जैसे लकड़ी बराबर समतल होती है, क्या हो गया। एक आदमी ने पानी पर चलना सीख लिया और गंगा को पार कर गया, ताली बजने लगी, मुझे महात्मा यदि कोई है तो यह है, पानी के ऊपर न चला। एक बूढ़ा था हमारे जैसा, उसने कहा जी तुमको बुलाया, महात्मा जी सुनो सुनो सुनो, तुम पानी पर चलाना, ये तो बड़े भारी आप योगी हैं, पानी के ऊपर मैं आदमी नहीं चल सकता, वो तो डूब जाएगा। तो आपने आज सचमुच में 2 पैसे का काम किया। 2 पैसे का कैसे,
मैं दो पैसे में नौका में जाता हूं, वहां से चलाता हूं, तो तुमने इतना दिन तक विद्या सीखा, योग सीखा, और ये पानी से उस पार ये लकड़ी के नाव पर दो पैसे में चले जाते हैं, भाई यही तो तुम्हारा योग, इस योग से भगवान नहीं मिलेंगे। न सांख्यम, सांख्य योग ये कहलाता है, एक पातंजल जो कहलाता है, मन की निवृत्ति करो, मन को किसी एक चीज में लगाओ, ऐसे यहां पर ले आओ मन को, सीधा बैठ जाओ, बैठ करके रेचक और पूरक करो, करने के बाद में एक तुम्हारा मन नहीं टिकता है तो एक दीवार पर एक बिंदु लगा दो स्याही, और बस उसी में मन को टिका दो, बस तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा योग हो गया। क्या हुआ इससे? भगवान से कोई भी संबंध नहीं ऐसे योगों से। धर्म, धर्म माने वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम धर्म की जरूरत है, किस लिए? इसमें साधु संत लोग रहते हैं, गृहस्थ लोग रहते हैं, किंतु सांसारिक नियमों को पालन करने के लिए वर्णाश्रम धर्म की जरूरत नहीं है, भगवान के भजन करने के लिए जरूरत है। यदि भक्ति नहीं है उसमें, ठाकुर जी की पूजा नहीं होती, घर में तुलसी जी नहीं है, तुलसी जी का आदर नहीं है, जिस घर में राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं है, शालग्राम नहीं है, श्री राम सीता का मूर्ति नहीं है, उसका पूजन नहीं है, वो घर घर नहीं है। उसको तो जो कहा गया कहने से आप लोग चिढ़ भी जाएंगे, उसको श्मशान कहा गया। इसलिए ऐसे धर्म से जिसमें भगवान की कोई चर्चा नहीं है, भगवान का नाम नहीं है, स्वाध्याय, वेदों के पास से भी कुछ नहीं होने का, लाख वेद पाठ करो। हम सुनते हैं वृंदावन में पाठ करते हैं वेदों का, बड़े सुरीले कंठ से माइक 10-20 लगा करके और पाठ करते हैं, करते क्या है पाठ में, ये वेदों के पास से चित्त एकाग्र हो सकता है, और ये बड़ा भारी धर्म है। शरीर संतुष्ट रहता है, कोई रोग नहीं होगा, उमरेगा नहीं तो वेद पाठ करने वाले मरेंगे जरूर, इसलिए वेद पाठ करना भी, यदि वेद ही पाठ करना है तो हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते, और नहीं आता है, राधा रमन हरि गोविंद, राधा रमन हरि गोविंद, जय जय गोपाल जय जय। राधे राधे।